This is विवेक कुमार हिंद, बी ए पार्ट टू, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस। अब हम जा रहे हैं समाजशास्त्र पेपर थ्री का अगला अध्याय करने। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए संवैधानिक प्रावधान। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेशन टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। पिछड़ा वर्ग, बैकवर्ड क्लास। भारतीय समाज में वे वर्ग जो कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक आदि दृष्टि से एक उचित स्तर से नीचे हैं और इन मामलों में अन्य वर्गों से पिछड़ गए हैं, उन्हें पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। सरकारी तौर पर इन पिछड़े वर्गों को तीन श्रेणियों के अंतर्गत रखा गया है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग। अनुसूचित जातियाँ जाति प्रथा के अंतर्गत पंचम वर्ण से संबंधित वे लोग हैं जिन्हें परंपरागत रूप में अछूत जाति कहा जाता था। ये लोग अशिक्षित, अत्यंत पिछड़े हुए तथा परंपरागत रूप में अनेक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक निर्योग्यताओं के शिकार थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन जातियों को वैधानिक व संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने तथा सरकारी सुविधाएं व छूट उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से उनकी एक सरकारी अनुसूची तैयार किया गया। जिन जातियों को इस अनुसूची में सम्मिलित किया गया उन्हें सरकारी या वैधानिक तौर पर अनुसूचित जातियां कहा जाने लगा। सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में इन जातियों की कुल संख्या 13,82,23,277 है। इनमें सर्वाधिक संख्या 2,89,64,874 लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक ऐसे मानव समूह निवास करते हैं जो कि सभ्य समाज से दूर जंगली, पहाड़ी या पठारी क्षेत्र में रहते हैं और प्रत्येक अर्थ में अत्यधिक पिछड़े हुए हैं। इन्हें वन्य जाति, आदिवासी दैट इज एब ओरिजिनल्स, जनजाति आदि नाम से संबोधित किया जाता है। इन्हें भी अनुसूचित जातियों की तरह अनेक संवैधानिक सुरक्षाएं तथा सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए इनकी एक अनुसूची तैयार की गई थी। सरकारी तौर पर इन जनजातियों को अनुसूचित जनजाति कहा गया है। सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में इन जनजातियों की कुल जनसंख्या 6,77,58,380 है, जिनमें से सर्वाधिक 1,48,03,983 मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। अन्य पिछड़ा वर्गों या संक्षेप में OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस को एक अलग श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। इन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग न कहकर अन्य पिछड़ी जातियां कहा जाता है। ये वे जातियां हैं जिन्हें अनुसूचित जातियों या जनजातियों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इस कारण इनको भी सभी संवैधानिक सुरक्षाएं एवं सरकारी सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं जो कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को प्राप्त हैं। फिर भी उनके पिछड़ेपन को स्वीकार करते हुए उन्हें एक अलग श्रेणी से रखकर कुछ सरकारी सुविधाएं दी गई हैं। अनुसूचित जातियों की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट। अनुसूचित जातियों की समस्याएं विभिन्न प्रकार के शोषण, प्रतिबंध, निर्योग्यताओं, प्रदत्त परिस्थिति, व्यवसाय की अपवित्रता आदि से संबंधित रही है। पहली सामाजिक समस्या। KM पनिक्कर ने लिखा है कि विचित्र बात तो यह है कि स्वयं अस्पृश्यों के अंदर एक पृथक जाति जैसा संगठन था। स्वर्ण हिंदुओं के समान उनमें भी बहुत उच्च तथा निम्न स्थिति वाली उपजातियों का संस्तरण था जो एक दूसरे से श्रेष्ठ होने का दावा करती थी। निम्न स्थिति प्रदत्त थी, जन्म से ही स्थिति निर्धारित थी। सामाजिक समस्या के अंतर्गत सामाजिक संपर्क प्रतिबंध विशेष उल्लेखनीय है। धुरिए 1969 ने महाराष्ट्र की महार अनुसूचित जाति पर लगे सामाजिक प्रतिबंधों के उल्लेख में बताया है कि घर के बाहर निकलते समय महार जाति के लोग गले में बर्तन लटकाते थे। इसका उपयोग वे थूक दान के रूप में करते थे। इन्हें इधर उधर थूकने का भी अधिकार नहीं था। उनकी छाया सवर्णों पर नहीं पड़ती थी। अन्य जातियों से संपर्क नहीं हो इसके लिए इनका आवास गांव के बाहर पृथक स्थान पर होता था। इन्हें सार्वजनिक स्थानों तथा सुविधाओं के उपयोग पर प्रतिबंध था। शिक्षा, मनोरंजन इनके लिए प्रतिबंधित थे। एक अलग समाज के रूप में ही इन्हें रहना पड़ता था। दूसरी जो समस्या है वो है रिलीजियस प्रॉब्लम्स, जो कि धार्मिक समस्या जिन्हें कहते हैं। अनुसूचित जातियां धार्मिक कर्मकांड पुरोहित द्वारा करवाने में असमर्थ थी। धार्मिक स्थलों पर प्रवेश प्रतिबंधित था। धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, प्रवचन सुनना, भजन कीर्तन सुनना आदि प्रतिबंधित था अछूत की अपवित्रता के बारे में भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अछूत को पवित्र कर सके। वे लोग अपवित्र ही जन्म लेते हैं, वे जीवन पर्यंत अपवित्र बने रहकर ही मर भी जाते हैं। तीसरी जो समस्या है वो आर्थिक समस्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अनुसूचित जातियां पवित्र व्यवसाय नहीं कर सकती थी, इन्हें अपना स्वतंत्र व्यवसाय करने की छूट नहीं थी। प्रदत्त परंपरागत व्यवसाय करना इनकी मजबूरी थी। स्वर्णों की सेवा के लिए इन्हें गंदगी उठाना, सफाई करना, चमड़े का काम आदि व्यवसाय करना पड़ता था। पारिश्रमिक भी नगद के रूप में नहीं मिलता था। संपत्ति रखने का कोई अधिकार अनुसूचित जातियों को नहीं था। वे कीमती धातु के गहने व बर्तन नहीं रख सकते थे। कठोर परिश्रम के बाद भी भरपेट भोजन का प्रबंध नहीं हो पाता था। स्वर्णों की दया पर जीवित रहना पड़ता था। चौथी जो समस्या है वो है राजनीतिक समस्या, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। अनुसूचित जातियों को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों से भी इन लोगों को वंचित रखा गया। नागरिक अधिकारों से भी ये वंचित रहे। दलितों को न्याय नहीं मिलने का एक महत्वपूर्ण कारण इनको राजनीतिक दृष्टि से शासक वर्ग से अलग रखना माना गया है। वर्तमान में भी बिहार और यूपी के कुछ लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में माफिया गिरोह चुनाव से पूर्व ही अनुसूचित जाति के लोगों को वोट देने से रोकने की रणनीति में सफल हो जाते हैं। पांचवी जो समस्या है वो है अस्पृश्यता की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ अनटचेबिलिटी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी प्रकार से अस्पृश्यता का व्यवहार या प्रचलन अपराध है। अस्पृश्यता का प्रचलन समाप्त कर इसे पूर्णतया 1955 में लागू कर दिया गया था। बाद में 1976 में अस्पृश्यता अधिनियम में कुछ परिवर्तन किए गए। इसे ज्ञातव्य अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अस्पृश्यता का शिकार व्यक्ति पुलिस को इसकी सूचना देता है और पुलिस अपराधी को तत्काल गिरफ्तार करती है। यदि अस्पृश्यता का शिकार व्यक्ति पुलिस को सूचित नहीं करता है तो अस्पृश्यता अधिनियम का कोई अर्थ नहीं है। मुमताज अली खान ने कर्नाटक राज्य में जाति के अध्ययन के आधार पर अस्पृश्यता अधिनियम के संदर्भ में कुछ एकल अध्ययन प्रस्तुत कर यह दर्शाया है कि मंदिर प्रवेश, आर्थिक प्रतिबंध, धार्मिक जुलूस, होटल प्रवेश, नाइयों की प्रवृत्ति, अनुसूचित जाति महिला अपमान के क्षेत्र में चौंकाने वाली घटनाएं देखी जा सकती हैं, जैसे परंपरागत प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर अनुसूचित जाति के लोगों पर स्वर्ण हिंदू आर्थिक दंड देने से आज भी नहीं डरते। अस्पृश्यता कानूनी रूप से तो दंडनीय अपराध है, लेकिन इसका प्रचलन पूर्णतया बंद नहीं हो सका है। जो अगली समस्या है वो है अत्याचार और शोषण की। भारत में जाति व्यवस्था के सशक्त होने के कारण उनका शोषण हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं। अनुसूचित जातियों में भी चेतना जागृत हुई है, यह जागृति नकारात्मक प्रभाव भी डाल रही है। उच्च जातियां और निम्न जातियां एक दूसरे के हितों को चोट पहुंचा रही हैं। जातीय संघर्ष उत्पन्न हो रहा है। अत्याचार और शोषण का शिकार अनुसूचित जातियों के वे लोग हैं जो आज तक किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं कर पाए। खेतिहर मजदूर व मेहनत करने वाले श्रमिक अभी तक उच्च वर्ग का अमानवीय व्यवहार सहन कर रहे हैं। उनके साथ मारपीट की जाती है, उनकी महिलाओं के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किए जाते हैं। जब ये लोग अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। जो अनुसूचित जातियां जागरूक शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गई हैं, उनसे उच्च जातियों का टकराव होता रहता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के समाचारों से भी ये जानकारी मिलती है कि बिहार और यूपी में अनुसूचित जाति के लोगों को वोट देने से भी रोका जाता है। उन्हें या तो मजबूर किया जाता है या उनके साथ ज्यादती करके अपने पक्ष में वोट डलवाए जाते हैं, या फिर उन्हें वोट देने के लिए आने ही नहीं दिया जाता। यह काम माफिया गिरोह द्वारा करवाया जाता है। अनुसूचित जातियों की समस्याओं के निराकरण के उपाय। सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर अनुसूचित जातियों की समस्याएं सुलझाने, उनका जीव स्तर सुधारने, उनके साथ सामाजिक न्याय करवाने के प्रयास भारत में स्वतंत्रता के पूर्व एवं स्वतंत्रता के बाद हुए हैं। गैर सरकारी स्तरीय प्रयास समाज सुधारकों, धर्मावलंबियों, राजनीतिक नेताओं द्वारा अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए आंदोलन किए गए। संत कबीर, रामानुज, जगतगुरु आदि, शंकराचार्य, चैतन्य, गुरु नानक, रामकृष्ण परमहंस, महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, रंगाराव सिंधे, राजा राम मोहन राय तथा महात्मा गांधी ने अनुसूचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के प्रयास किए। इन प्रयासों से उनकी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आया। ज्योतिराव फुले ने 19वीं शताब्दी के अंत में पूना में सत्य शोधक समाज की स्थापना कर अस्पृश्यों को अधिकार दिलवाने के प्रयास किए। भीमराव अम्बेडकर ने 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ और अखिल भारतीय दलित वर्ग फेडरेशन की स्थापना की। महात्मा गांधी ने अनुसूचित जातियों को सम्मानजनक सामाजिक स्तर तक पहुंचाने के लिए इन्हें हरिजन नाम दिया। इनकी समस्याओं के समाधान हेतु इसे राजनीतिक कार्यक्रम का अंग बनाया। महात्मा गांधी के प्रयासों से 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। अस्पृश्यता मिटाने तथा इनके विकास में संघ की भूमिका प्रभावशाली रही। उसके बाद सरकारी स्तरीय प्रयास, संवैधानिक प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए अधिनियम बनाए गए। धारा 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं बरतेगा। धारा 16 के अनुसार राज्य के अधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में समस्त नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। कोई भी धर्म, वंश, जाति, स्थान आदि के आधार पर अपात्र नहीं माना जाएगा। धारा 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त घोषित कर दिया गया। धारा 25 के द्वारा धर्म संबंधी स्वतंत्र अधिकार दिए गए हैं। धारा 29 के अनुसार किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा आदि के आधार पर किसी भी सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। धारा 46 के द्वारा राज्य की ओर से समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आर्थिक और शिक्षा संबंधी विशेष सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है, जिससे वे अपनी उन्नति कर सकें। धारा 330, 332 और 334 के द्वारा संसद तथा राज्य के विधानमंडलों में 20 वर्ष तक अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्रतिनिधित्व की विशेष सुविधा दी गई है। इस अवधि को समय समय पर बढ़ाया जाता रहा है और आज भी यह सुविधा जारी है। धारा 335 के द्वारा प्रशासन की कार्य कुशलता को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों को केंद्र तथा राज्य सेवाओं में स्थान दिया जाएगा। दूसरा है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। 1955 की विभिन्न धाराओं के द्वारा अस्पृश्य जातियों की सभी निर्योग्यताओं तथा असमर्थताओं को समाप्त कर दिया गया है। अनुसूचित जातियों को सार्वजनिक पूजा स्थलों, सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने का अधिकार दिया गया है। तीसरा है सफाई कर्मचारी राष्ट्रीय आयोग अधिनियम। इसके अंतर्गत अप्रैल में आयोग का गठन किया गया। सफाई कर्मचारियों की विशिष्ट समस्याओं, उनके स्तरों में असमानता को दूर करने, उनके लिए सुविधाएं और अवसर प्रदान करने संबंधी विशिष्ट कार्यक्रमों की सिफारिश करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों के विकास हेतु अनेक कल्याण योजनाएं, प्रावधान, धाराएं और अधिनियम बनाकर लागू किए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। अनुसूचित जनजातीय का अर्थ, मीनिंग ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। डॉक्टर धुरिए जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहते हैं। उन्होंने ऐतिहासिक प्रमाण देकर यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया कि अधिकांश जनजातियां हिंदू धर्म को मानती हैं, अतः वे हिंदू समाज के ही अंग हैं। डॉक्टर मजूमदार के अनुसार जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का एक संकलन है, जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक सामान्य भूभाग पर रहते एवं सामान्य भाषा बोलते हैं, जो विवाह, व्यवसाय या पेशा के संबंध में कुछ निषेधों का पालन करते हैं और जिन्होंने एक निश्चित और मूल्यांकित परस्पर आदान प्रदान की व्यवस्था का विकास किया है। डॉक्टर रिवर्स के अनुसार एक जनजाति एक सामाजिक समूह है जो सामान्य भाषा बोलता है तथा युद्ध आदि के समय एक होकर कार्य करता है। लिंटन के अनुसार साधारण रूप में जनजाति खानाबदोशी झुंडों का एक समूह है जो एक भूभाग पर रहता है तथा जो सांस्कृतिक समानताओं, सतत संपर्कों तथा एक निश्चित हितों की भावनाओं के आधार पर एकता की भावना रखता हो। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि साधारणतः प्रत्येक जनजाति का एक भौगोलिक क्षेत्र में ही निवास होता है। उनकी सामान्य संस्कृति, भाषा, राजनीतिक संगठन एवं व्यवसाय होता है और एक जनजाति के सदस्य अंतर्विवाह के नियमों का पालन करते हैं, अर्थात एक जनजाति सामान्यतः अपनी ही जनजाति में विवाह करती है। अनुसूचित जनजातियों की समस्याएं, शेड्यूल ट्राइबल प्रॉब्लम्स। मजूमदार व मदान ने जनजातियों से संबंधित समस्याओं को दो भागों में विभाजित किया है। पहला, सामाजिक आर्थिक समस्याएं जो आधुनिक नीतियों एवं कानूनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई, जैसे भूमि हस्तांतरण अथवा कर्ज लेने के कारण जमींदारों, व्यापारियों, सरकारी कर्मचारियों द्वारा शोषण, और दूसरा, परंपरागत आर्थिक क्रियाओं के परित्याग के कारण भूदान, भूशोषण आदि से उत्पन्न हुई समस्याएं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला ने भारतीय जनजातियों की स्थिति पर एक गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें जनजातियों की निम्नलिखित समस्याओं का उल्लेख किया। पहला, दुर्गम निवास स्थान की समस्या। भारत की जनजातियां दुर्गम स्थानों, जंगल, पहाड़ पर निवास करती हैं। सड़क संपर्क का अभाव के कारण यातायात के साधन पहुंच नहीं पाते, संचार के साधनों का अभाव है, अन्य समाजों से कटे हुए होने से बृहत समाज की संस्कृति से भी ये अपरिचित होते हैं, दुर्गम निवास के कारण ये पिछड़े हुए हैं और विकास के लाभों से वंचित रहे हैं। आर्थिक समस्याएं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जनजातियों के पास कृषि योग्य भूमि बहुत सीमित होती है। कुछ जनजातियां जंगल में कृषि करने के लिए आग लगाती हैं और साफ हुई धरती पर खेती करती हैं। जब यह भूमि खेती योग्य नहीं रहती है तो अन्यत्र जंगल को साफ करने के लिए आग लगाते हैं और पुनः कृषि करते हैं। इसे झूम कृषि कहा जाता है। यह स्थानांतरित खेती है। यह अब नवीन कानूनों के उपलब्ध होने के बाद जंगल पर स्वामित्व का अधिकार नहीं रहा। इन्हें सीमित भूमि सरकार ने उपलब्ध करवाई है, लेकिन भय के कारण जनजाति के लोग उस भूमि पर खेती नहीं करते। साहूकारों ने रुपए उधार देकर जनजाति के लोगों की जमीन हड़प ली, जिससे जनजाति के लोग उस जमीन पर नौकर के समान काम करते हैं। पहले जंगलों पर जनजातियों का ही अधिकार था। वे स्वतंत्र रूप से जंगली वस्तुओं को एकत्रित कर अपना पेट भर लेते थे, लेकिन अब जंगल से उन्हें बेदखल कर दिया गया है, अतः उनके सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। कई स्थानों पर जनजाति के लोग श्रमिक के रूप में काम करते हैं। उद्योगों में, चाय बागानों में, कोयला खदानों में जनजाति के लोग ही श्रमिक हैं, लेकिन उनका भरपूर शोषण किया जाता है। उन्हें कम मजदूरी देकर पूरा काम लिया जाता है। अशिक्षित जनजाति श्रमिक शोषण का शिकार है। तीसरी समस्या है वो धार्मिक समस्या, रिलीजियस प्रॉब्लम्स। जनजातियाँ आत्मवाद में विश्वास करती हैं। कई जनजातियाँ हिंदू रीति रिवाजों व देवी देवताओं में विश्वास करती हैं। जनजातीय निर्धनता और भोलेपन का लाभ उठाकर ईसाई मिशनरीज ने अनेक जनजातियों के लोगों को ईसाई बना दिया है। उनका आत्मवाद का विश्वास समाप्त कर दिया है। उनके नाम बदल दिए गए, उन्हें चर्च में जाना सिखा दिया गया। आर्थिक सहायता, शिक्षा व कुछ भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाकर जनजाति के लोगों का धर्म परिवर्तन कर उनकी सांस्कृतिक पहचान को समाप्त करने के अनेक प्रयास किए गए हैं। चौथी जो समस्या है वो सांस्कृतिक समस्या है, कल्चरल प्रॉब्लम्स। प्रत्येक जनजाति अपने भौगोलिक आधार पर रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज तथा भाषा से पहचानी जाती है। अन्य समूहों से संपर्क के कारण जनजातीय संस्कृति को अपने अस्तित्व के संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिससे जनजातीय संस्कृति संकट में है। पांचवी जो समस्या है वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, हेल्थ प्रॉब्लम्स। वन और पहाड़ों के बीच रहने वाले जनजातीय समुदाय को दोनों समय पेट भरने के लिए भी भटकना पड़ता है। इसे वे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं तथा अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। बाहरी संपर्क से भी जनजातियों में छूत की बीमारी पहुंची है। पहले जंगलों में ये लोग निर्वस्त्र घूमते थे। बाहरी समाज के संपर्क से जब इन्होंने अपने बदन को कपड़ों से ढकना प्रारंभ किया, इनमें चर्म रोग हो गया। ये बीमारी का इलाज झाड़ फूंक, जादू टोना आदि के द्वारा ही करते हैं। चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होने से असाध्य रोग का उपचार नहीं हो पाता। छठी जो समस्या है वो है सामाजिक समस्याएं। गैर जनजातीय समाज के संपर्क से जनजातियों में सामाजिक कुरीतियां पनपने लगी हैं। पहले जनजातीय समुदाय में युवावस्था में ही विवाह होते थे, लेकिन अब वहां भी बाल विवाह होने लगे हैं। कन्या मूल्य पहले वस्तुओं के रूप में प्रचलित था, अब रुपयों में दिया जाने लगा है तथा इसमें बहुत अधिक वृद्धि भी हुई है। युवाओं के लिए यौन शिक्षा आदि देने के लिए युवा गृह होते थे, धीरे धीरे युवा गृहों का पतन हो रहा है। इससे सामाजिक जीवन में कई हानियां हो रही हैं। जनजातियों में अवैध यौन संबंध भी हो रहे हैं। ठेकेदार, साहूकार तथा श्रम की तलाश में पुरुषों का पलायन होने से उनमें वैश्यावृत्ति की प्रवृत्ति भी उत्पन्न हो रही है। अब तो जनजातियों में भी विवाह विच्छेद की समस्या उत्पन्न हो रही है। शिक्षा की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन। जनजातियों का निवास, उनकी भौगोलिक बनावट उन तक शिक्षा पहुंचाने में बाधक रहे हैं। अशिक्षित अधिक होने के कारण वे अन्य समस्याओं का शिकार बने। अंधविश्वास, बुराइयां, स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन। जनजातियों का निवास, उनकी भौगोलिक बनावट उन तक शिक्षा पहुंचाने में बाधक रहे हैं। अशिक्षित अधिक होने के कारण वे अन्य समस्याओं का शिकार बने। अंधविश्वास, बुराइयां, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, ऋणग्रस्तता, भूस्वामित्व का स्थानांतरण, अपने लिए बनाए गए प्रावधानों से वंचित रहना, शोषण आदि परेशानियां अशिक्षा से ही उत्पन्न हुई। राजनीतिक समस्याएं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। जनजातियों के गांव का एक मुखिया होता था। यह पद वंशानुगत था। सभी प्रशासकीय व्यवस्थाएं उसी के अधीन थी। समाज के मानदंडों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने का अधिकार भी मुखिया के पास ही होता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई, जिससे जनजातियों में भी राजनीतिक चेतना आई है। वे अपने अधिकारों की मांग करने लगे हैं, वन संपदा पर अपना परंपरागत अधिकार होने का दावा करते हैं। राजनीतिक दृष्टि से जनजातियों की समस्या को दो तरफा कह सकते हैं, एक तो राजनीतिक चेतना से उत्पन्न विघटन की समस्या तथा दूसरी जिन लोगों में भी चेतना की कमी है उनसे उनकी कीमत पर उन्हीं के जागरूक नेता राजनीतिक लाभ उठाकर वास्तविक जरूरतमंदों का शोषण कर रहे हैं। सीमा प्रांत की जनजातियों की समस्याएं। चीन, बर्मा, बांग्लादेश से जुड़े प्रांतों में विदेशी लोग जनजातियों को भड़काते हैं, उनके स्वायत्त होने की मांग का समर्थन करते हैं, उन्हें गोपनीय तरीके से हथियार देते हैं तथा उपद्रव करने के लिए प्रेरित करते हैं। अपने राष्ट्र के सामने राष्ट्र विरोधी गतिविधियां सीमा प्रांत जनजातियों में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तेजी से बढ़ी हैं। अगली समस्या जो है वो है निर्धनता, पॉवर्टी। जनजातियों में कुछ जनजातीय समूह निर्धन हैं। सर्वाधिक उपेक्षित और निर्धन जनजातीय समूहों का पता लगाकर उनके विकास के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है। निर्धनता और उपेक्षा को समाप्त करने के उद्देश्य से 1967 से जनजातीय आयुक्त द्वारा इन समुदायों की पहचान करके नामांकित करने का कार्य प्रारंभ किया गया था। अगली समस्या एकीकरण की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ इंटीग्रेशन। भौगोलिक दृष्टि से ये लोग जंगलों और पहाड़ों में निवास करते हैं, बृहत समाज से भौगोलिक दूरी होने से भी इन्हें समाज के साथ जुड़ने की बात को भी क्रियान्वित करने में कठिनाई आती है। एकीकरण की चर्चा करते समय इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाता है कि जनजातियों की सांस्कृतिक पहचान अलग बनी रहे, लेकिन बृहत समाज के एक भाग के रूप में इनका अस्तित्व होना चाहिए। इन्हें बृहत समाज में मिलकर अपनी पहचान नहीं खोनी है। एकीकरण की समस्या में यह सभी पहलू शामिल हैं। अब आखिर इन समस्याओं के कारण क्या हैं? What is the causes behind these problems? जनजातियों की इन समस्याओं के उत्पन्न होने के अनेक कारण रहे हैं, जिनमें ये निम्नलिखित प्रमुख हैं। पहला, ईसाई मिशनरियों की कूटनीति। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार उपनिवेश काल में प्रारंभ हुआ। ईसाई मिशनरियों ने जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश किया। जनजातीय लोगों की अज्ञानता, अशिक्षा, निर्धनता को दूर करने के उद्देश्य से इनके कल्याण के कार्यक्रम प्रारंभ किए। अप्रकट रूप से धर्म परिवर्तन करने का कार्य ईसाई मिशनरियों ने प्रत्येक पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों में प्रारंभ किए। धर्म परिवर्तन में बाहरी संस्कृति ने जनजातीय समाज में पहचान का संकट उत्पन्न किया। दूसरा, बाहरी समाजों से संपर्क एवं शोषण। जनजातीय समूह सामान्यतः जंगलों और पहाड़ों में निवास करते रहे हैं, इस कारण सैकड़ों वर्षों तक उनका बाहरी समाज से संपर्क नहीं हो पाया। विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप संपर्क साधन जनजातीय समाज तक भी पहुंच रहे हैं। सड़क संपर्क, यातायात एवं संदेश वाहन अब दुर्गम और कठिन आवास स्थानों तक भी पहुंचे हैं। जनजातीय समाज का बाहरी समाज से अनुकूलन नहीं हो सकने से ये समस्याएं उत्पन्न हुई। तीसरी है, नई शासन व्यवस्था। अंग्रेजों के शासनकाल में संपूर्ण देश पर सामान्य राजनीतिक व्यवस्था लागू की गई। इसके फलस्वरूप जनजातियों के अधिकार सीमित हो गए। वन संपदा पर स्वायत्तता संबंधी प्रतिबंध लागू हुए। जनजातियों के स्वतंत्र रूप से जंगलों के उपयोग पर रोक लगा दी गई। वन अधिकार, पुलिस व न्याय व्यवस्था से जनजातियों का परिचय हुआ। इसी नई व्यवस्था के लागू हो जाने पर उन्हें अनेक आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। चौथा है, वो है जनजातीय क्षेत्रों में वन संपदा एवं खनिज। जनजातीय क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों के भंडार हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विस्तार के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर दोहन प्रारंभ हो गया। जंगल समाप्त होने लगे। मूल्यवान वन संपदा का संग्रह सरकार व अन्य एजेंसियों द्वारा किया जाने लगा। खनिज आधारित उद्योग प्रारंभ हुए। जनजातीय लोगों की स्वतंत्रता और वन संपदा का एकाधिकार समाप्त हुआ। जनजातियों को वन संपदा से जुड़ी अर्थव्यवस्था से बेदखल कर दिया गया, जिससे उनके सम्मुख रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया। पांचवी जो समस्या है वो है दुर्गम स्थान पर निवास। भारत के लगभग सभी जनजातियों की पहचान उनके पहाड़ों, जंगलों और दूरदराज के क्षेत्रों में निवास करती हैं। इन क्षेत्रों से बाहरी समाज का संपर्क कठिन है। इन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना एक कठिन कार्य है। जनजातीय समुदाय पिछड़ा हुआ है, समस्याओं से ग्रस्त है, आधुनिक सुविधाओं से वंचित है। चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, मनोरंजन जैसी मौलिक सुविधाएं जनजातियों तक पहुँचाने में उनका दुर्गम निवास बाधक बनता है। उसके बाद अशिक्षा। अशिक्षा के कारण इस समुदाय के लिए निर्धारित विकास कार्यक्रमों से ये लोग लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। स्वरोजगार, सरकारी नौकरियों में आरक्षण तथा अनेक लाभकारी योजनाओं के चलते जनजातीय समुदाय के लोग अपनी स्थिति को ऊंचा नहीं उठा सके हैं। अशिक्षा के कारण वह यह समुदाय अनेक क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है। उपयुक्त कारणों से जनजातियों में अनेक प्रकार की नई समस्याओं का जन्म हुआ। उसके बाद अब हम बात करेंगे प्रोविजन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स प्रॉब्लम, अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं हेतु समाधान। पहला, संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। जनजातियों को सुरक्षा प्रदान करने व उनके विकास को प्राथमिकता देने के लिए संरक्षण संबंधी तथा आरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। और संविधान की धारा 16(4) तथा 335 के अनुसार सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी के लिए 5.5% स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। धारा 338 के अनुसार राष्ट्रपति जनजातियों के लिए विशेष आयुक्त नियुक्त करेगा। संविधान के 10वें भाग और 5वीं तथा 6वीं अनुसूचियों में जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। भाग 6 धारा 164 के अनुसार असम के अतिरिक्त बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भी जनजातीय कल्याण मंत्रालय स्थापित करना। अगला, धारा 224(2) के अंतर्गत असम की जनजातियों के लिए जिला और प्रादेशिक परिषद स्थापित करने की व्यवस्था है। नेक्स्ट, धारा 330 और 332 के अनुसार राज्यों की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में इनके लिए स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। लोकसभा में 40 तथा विधानसभाओं में 303 स्थान सुरक्षित हैं। नेक्स्ट, संविधान के 12वें भाग के 275 अनुच्छेद के अनुसार केंद्रीय सरकार राज्य को जनजातीय कल्याण एवं प्रशासन के लिए विशेष धनराशि देगी। दूसरी जो व्यवस्था है, दूसरा जो प्रावधान है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है, जिसे कि हम प्रशासनिक व्यवस्था कहते हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ अनुच्छेद 244 और संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित किए गए हैं। इन राज्यों के राज्यपाल प्रतिवर्ष अनुसूचित क्षेत्रों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। असम, मेघालय और मिजोरम का प्रशासन संविधान की 6वीं अनुसूची के उपबंधों के आधार पर किया जाता है। इन अनुसूची के उपबंधों प्रोविजंस के आधार पर किया जाता है। इस अनुसूची के अनुसार उन्हें स्वायत्त शासी ऑटोनोमस जिलों में बांटा गया है। इस प्रकार के 8 जिले हैं, असम के उत्तरी कछार पहाड़ी जिले तथा मिकिर पहाड़ी जिले, मेघालय के संयुक्त खासी जयंतिया जोवाई और गारो पहाड़ी जिले तथा मिजोरम के चकमा, लाखेर और पावी जिले। प्रत्येक स्वायत्त शासी जिले में एक जिला परिषद होती है जिसमें 36 से अधिक सदस्य नहीं होते। इनमें 4 मनोनीत हो सकते हैं। क्षेत्र का चुनाव व्यस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। उस परिषद को कुछ प्रशासनिक, वैधानिक और न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तीसरा जो है वो है कल्याणकारी एवं सलाहकारी एजेंसी, वेलफेयर एडवाइजरी एजेंसीज। अगस्त 1978 में संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक कमीशन की स्थापना की गई। इसका एक चेयरमैन और 4 सदस्य बनाए गए। वह कमीशन 1955 के नागरिक अधिकार अधिनियम सिविल राइट्स एक्ट 1955 के अंतर्गत संविधान में इन लोगों के लिए सुरक्षा संबंधी किए गए प्रावधानों के बारे में जांच करता है और उचित उपाय सुझाता है। संसदीय समितियां, भारत सरकार ने 1968, 1971 तथा 1973 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के संविधान में प्रदत्त सुरक्षा एवं उनके कल्याण की जांच के लिए 3 संसदीय समितियां भी नियुक्त की। वर्तमान में संसद की एक स्थायी समिति बनाई गई है जिसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष रखा गया है। इस समिति के 36 सदस्य होते हैं जिनमें से 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा में से लिए जाते हैं। अब राज्यों में कल्याण विभाग, राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की देखरेख एवं कल्याण के लिए पृथक विभागों की स्थापना की गई है। बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु अलग मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। कुछ राज्यों में केंद्र की भांति संसदीय समितियों के समान विधानमंडलीय समितियां बनाई गई हैं। अगला है रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर्स, विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व। संविधान में अनुच्छेद 330 और 332 के द्वारा लोकसभा तथा राज्यों के विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान सुरक्षित किए गए हैं। प्रारंभ में वह व्यवस्था 10 वर्षों के लिए थी जो बढ़ाकर अब 25 जनवरी 1990 तक हो गई। संसदीय अधिनियम के द्वारा उन केंद्र शासित क्षेत्रों में जहां विधानसभा में इस प्रकार का आरक्षण किया गया है, वर्तमान में लोकसभा में 40 और विधानसभाओं में 315 स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित किए गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था के लागू होने के साथ ही इन लोगों के लिए ग्राम पंचायतों एवं अन्य स्थानीय निकायों में भी स्थान सुरक्षित किए गए हैं। उसके बाद है राजकीय सेवाओं में आरक्षण, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज। ऑल इंडिया लेवल पर खुली प्रतियोगिताओं द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों के लिए 7.5% स्थान सुरक्षित किए गए हैं। ग्रुप सी और डी के पदों के लिए जिनमें स्थानीय और प्रांतीय आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं, प्रत्येक प्रांत और केंद्र शासित प्रदेश अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात में ही स्थान सुरक्षित रखता है। ग्रुप बी सी और डी में होने वाली विभागीय परीक्षाओं डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियां तथा ग्रुप बी सी डी और ए पदोन्नति में भी अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% स्थान सुरक्षित किए हैं। यदि उनमें आरसेट इंटू टू बटा थ्री परसेंट से अधिक सीधी भर्ती न की जाती हो, ग्रुप ए जिनमें ₹2,250 या इससे कम वेतन वाले पदों पर की जाने वाली पदोन्नतियों में भी स्थान सुरक्षित किए गए हैं। जनजातियों के लोगों को नौकरियों में प्रतिनिधित्व देने के लिए कई प्रकार की छूट दी गई है, जैसे आयु सीमा में छूट, उपयुक्तता के मानदंड में छूट, चयन संबंधी अनुपयुक्तता में छूट, अनुभव संबंधी योग्यता में छूट तथा ग्रुप ए के अनुसंधान वैज्ञानिक तथा तकनीकी संबंधी स्तरों में छूट। राज्य सरकारों ने भी अनुसूचित जातियों को राजकीय सेवाओं में भर्ती करने और उन्हें पदोन्नतियां देने के संबंध में कई प्रावधान किए हैं। उसके बाद है विकास योजनाएं, डेवलपमेंट स्कीम्स। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास के लिए अनेक प्रयास किए हैं। इन लोगों के कल्याण के लिए प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं में विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। उसके बाद है जनजातीय अनुसंधान केंद्र, ट्राइबल रिसर्च सेंटर। जनजातियों से संबंधित विषयों पर अनुसंधान करने के लिए जनजातीय अनुसंधान केंद्र खोले गए हैं। अनुसूचित जातियों की कला, संस्कृति एवं रीति रिवाजों का अध्ययन किया जाता है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कार्य कर रहे हैं। उसके बाद है कल्याण योजनाएं, वेलफेयर स्कीम्स। केंद्र तथा राज्य स्तर पर अनेक कल्याणकारी योजनाएं जनजातियों के लिए चलाई जा रही हैं। इनको व्यवसाय तथा रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र व मार्गदर्शन केंद्र भी खोले गए हैं। छात्रवृत्तियां, छात्रावास सुविधाएं, बालिका छात्रावास की व्यवस्था की गई है। परीक्षा शुल्क में छूट, निःशुल्क शिक्षण सामग्री, दोपहर का भोजन, आश्रम स्कूलों की स्थापना आदि व्यवस्था की गई है। उसके बाद है सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटी। जनजातियों पर किए जाने वाले अत्याचारों व शोषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा सहकारिता आंदोलन प्रारंभ किया गया। ये समितियां वन संपदा संग्रह, वन संपदा उत्पादन तथा वितरण प्रणाली में ठेकेदारों का दखल बंद करने तथा जनजातियों को भागीदार बनाकर जंगल में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं को संग्रहित करवाकर उचित मूल्य पर विक्रय प्रबंध सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य हो रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे हम कहते हैं उसका आखिर अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। भारतीय संविधान के भाग 16 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग शब्दावली का प्रयोग किया गया है। सामान्यतया अन्य पिछड़ा वर्ग में उन वर्गों को लिया जा सकता है जिन्हें अछूतों से ऊंचा और ब्राह्मणों से नीचा समझा जाता है और जो लोग सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। भारत के राष्ट्रपति ने 29 जनवरी 1953 को काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। आयोग को निर्देश दिया गया था कि वह एक सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि को ध्यान में रखकर पिछड़ा वर्ग का निर्धारण करे, उसकी एक सूची तैयार करे, उसकी सामाजिक और शैक्षिक समस्याओं का पता लगाए। लगभग 2 वर्षों के बाद आयोग ने 2,339 जातियों और उपजातियों की एक सूची तैयार की। पिछड़ा वर्ग की सूची बनाने के लिए आयोग ने संपूर्ण जाति को ही पिछड़ेपन का आधार माना, बाद में निर्धनता, मकान और व्यवसाय को भी पिछड़ेपन के निर्धारण का कारक माना। केंद्र सरकार ने काका कालेलकर आयोग की सिफारिशों का विश्लेषण किया तथा जाति को पिछड़ा वर्ग का आधार मानना स्वीकार नहीं किया। इंडियन गवर्नमेंट ने 1961 में राज्य सरकारों से उनके यहाँ अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए सर्वेक्षण कराने के आदेश दिए जिसका आधार आर्थिक हो न कि जातिगत। राज्य सरकारों ने आय और व्यवसाय को आधार मानकर पिछड़े वर्गों की सूची तैयार कर उन्हें वर्गीकृत किया। अब हम बात करेंगे ये मंडल आयोग, आखिर ये मंडल आयोग है क्या, इसको गठित क्यों किया गया। मंडल आयोग पिछड़ा वर्ग का आधार मंडल कमीशन द बेसिस फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। जनता पार्टी सरकार ने सन 1977 में अपने चुनाव घोषणा पत्र में पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी और शैक्षणिक सेवाओं में से 25-33% तक आरक्षण देने का वादा किया था। उसी वादे के अनुरूप लोकसभा के सदस्य बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग का गठन किया गया था। इसी को मंडल आयोग कहा जाता है। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट पर दोनों सदनों में 1982 में चर्चा हुई था। पुनः सचिवों की एक समिति को सौंप दिया गया। संसद के दोनों सदनों में मामला बार बार उठाने पर भी कोई निर्णय नहीं हुआ। अब हम बात करेंगे पिछड़ा वर्ग के मापदंड क्या है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। मंडल आयोग ने एक विशेष जाति या वर्ग को पिछड़ा मानने के लिए 3 सूचकों का उपयोग किया। ये सूचक सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक थे। प्रत्येक सूचक में अलग अलग मापदंड निर्धारित किए गए थे। सामाजिक सूचक में 4 मापदंड थे। पहला, वे जातियां या वर्ग जिन्हें दूसरे व्यक्ति सामाजिक रूप से पिछड़ा मानते हैं। दूसरा, वे जातियां या वर्ग जो अपने जीवन यापन के लिए शारीरिक श्रम करते हैं। तीसरा, वे जातियां या वर्ग जिनमें राज्य के औसत से अधिक कम से कम 25% स्त्रियां और 10% पुरुष 17 वर्ष की आयु से पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह कर लेते हैं, और कम से कम 10% स्त्रियां और 5% पुरुष इस 17 वर्ष आयु से पहले शहरी क्षेत्रों में विवाह करते हैं। चौथा, वे जातियां या वर्ग जिनमें स्त्रियों की श्रम में भागीदारी राज्य के औसत से कम 25% अधिक है। शैक्षिक सूचक के 3 मापदंड थे। वे जातियां या वर्ग जिनमें 5-15 वर्ष की आयु समूह के बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए राज्य के औसत से कम 25% अधिक है। दूसरा, वे जातियां या वर्ग जिनमें 5-15 वर्ष के आयु समूह के विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने की दर राज्य के औसत से कम 25% अधिक है। और तीसरा, वे जातियां या वर्ग जिनमें मैट्रिक, हायर सेकेंडरी अनुत्तीर्ण लोगों का अनुपात राज्य के औसत से कम 25% अधिक है। आर्थिक सूचक के 4 मापदंड थे। पहला, वे जातियां या वर्ग जहां परिवार की संपत्ति का औसत मूल्य राज्य के औसत से कम 25% नीचे है। दूसरा, वे जातियां या वर्ग जिनमें कच्चे मकानों में रह रहे परिवारों की संख्या राज्य के औसत से कम 25% अधिक है। तीसरा, वे जातियां या वर्ग जिनमें 50% परिवारों के पीने के पानी का स्रोत आधे किलोमीटर से अधिक दूर है। और चौथा, वे जातियां या वर्ग जिनके परिवारों में ऋण लेने की संख्या राज्य के औसत से 25% अधिक है। अब हम बात करेंगे पिछड़े वर्गों की समस्याओं के बारे में। प्रॉब्लम्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। अन्य पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। भूमिहीन कृषक की समस्या। भारत के अधिकतर भाग में पिछड़े वर्गों के सदस्यों का भूमि पर अधिकार बहुत कम होता है। गांवों में वे अधिकतर भूमिहीन कृषक के रूप में ही बने रहते हैं और उस रूप में उन्हें उच्च जातियों के खेतों में काम करना पड़ता है। इस रूप में उनका अनेक प्रकार से शोषण किया जाता है। वे सुबह से शाम तक खेतों पर कड़ी मेहनत करते रहते हैं, फिर भी उन्हें आर्थिक रूप में समृद्ध होने पर होने का अवसर कभी मिलता ही नहीं है। वे अधिकांशतः अपने मालिक की दया पर निर्भर रहते हैं। दूसरा, पेशों को चुनने की समस्या। पिछड़े वर्गों के सदस्य सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक तौर पर पिछड़े होने के कारण उनके सामने पेशों को चुनने की समस्या स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। अच्छे किस्म के पेशों के चुनाव हेतु आर्थिक और विशेषकर शैक्षिक तौर पर समृद्ध होना आवश्यक है। अतः पिछड़े वर्ग के सदस्य इस मामले में पिछड़े हुए होते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इन वर्गों के बच्चे दूसरे वर्गों के साथ समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं तथा आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वे अपना धन लगाकर कोई स्वतंत्र व्यवसाय भी शुरू नहीं कर पाते हैं। इस कारण वे आर्थिक रूप में पिछड़ जाते हैं। तीसरा जो है वो है वेतन की समस्या। पिछड़े वर्गों को अपने काम का उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता। गांवों में वे खेतों में काम करते हैं जहां की नगद वेतन बहुत कम मिलता है। ज़्यादातर मामलों में खेत का मालिक उन्हें उनके काम के बदले में अनाज दे देता है जो कि पर्याप्त नहीं होता। गांव व शहरों में धोबी, कुम्हार, नाई आदि अपना छोटा छोटा धंधा करते हैं, पर इसे कमाई बहुत कम होती है और उनके परिवार का भरण पोषण कठिनाई से ही हो पाता है। चौथा जो है वो ऋणग्रस्तता की समस्या है। अधिकतर पिछड़े वर्गों की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उनके जीवन में ऋणग्रस्तता की समस्या सदैव ही बनी रहती है। उनकी आय इतनी कम होती है कि वे उचित रूप में भोजन, कपड़ा व मकान की मौलिक आवश्यकताओं को भी उचित ढंग से पूरा नहीं कर पाते। इसका परिणाम यह होता है कि बीमारी, जन्म, मृत्यु, विवाह, दुर्घटना आदि के समय उन्हें अनिवार्य रूप में उधार मांगकर अपनी आवश्यकता को पूरा करना होता है। यह ऋण वे अधिकतर साहूकार जमींदार या महाजनों से लेते हैं, जो कि एक और तो ब्याज की ऊंची दर पर ऋण देते हैं और दूसरी ओर ऋण के कागजात में हेराफेरी करके ऋण लेने वाले हमेशा के लिए अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। पांचवी जो समस्या है वह है श्रम विभाजन में निम्न स्थान की समस्या। मिल, फैक्ट्री आदि में पिछड़े वर्गों के सदस्यों को केवल वही काम मिलते हैं जो कि निम्न स्तर के होते हैं। श्रम विभाजन में उनके हिस्से में अच्छे काम नहीं आते हैं, वे जिंदगी भर अकुशल श्रमिक अनस्किल्ड लेबर ही बने रहते हैं। इससे उन्हें वेतन कम मिलता है, उनकी आर्थिक स्थिति गिर जाती है। छठा है शिक्षा संबंधी समस्या। भारत में उच्च व तकनीकी शिक्षा बहुत महंगी है। उच्च शिक्षा तक पहुंचना पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए दूर का सपना सा लगता है। इसका परिणाम यह होता है कि आर्थिक व सामाजिक दोनों ही स्तर पर ये बच्चे पिछड़ते चले जाते हैं और देश की प्रगति के सच्चे भागीदार नहीं बन पाते हैं। सातवीं जो समस्या है वह उच्च वर्गों द्वारा भेदभाव व अत्याचार की समस्या। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वैधानिक या संवैधानिक तौर पर भारत के प्रत्येक नागरिक को हर मामले में समान दर्जा व समान अधिकार दिए जाने के बाद यह आशा की जाती रही कि ये भेदभाव व अत्याचार थम जाएगा और पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय व बराबरी का दर्जा मिल जाएगा, पर वास्तव में ऐसा हुआ नहीं है। आज भी अधिकांशतः गांवों में उत्पीड़न उच्च जातियों के द्वारा किया जाता है। एक दो उच्च जातियां एक गांव विशेष में एक अत्यंत संगठित शक्ति के रूप में उभरती हैं। उनके हाथों में आर्थिक या राजनीतिक अथवा दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं और उसी शक्ति के बल पर वे गांव के निर्बल वर्गों पर अब अनेक प्रकार के अत्याचार करते हैं। उनकी बस्ती में आग लगा देते हैं, उन्हें बेघर कर देते हैं, बंदूक की नोक पर उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटते हैं, तोड़ फोड़ व लूटपाट करते हैं। चुनाव के समय एक विशेष प्रत्याशी के पक्ष में जोर जबरदस्ती वोट डलवाने के लिए पहले से ही अत्याचार व आतंक का माहौल बना देते हैं। अब हम चर्चा करेंगे पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु सरकारी प्रयास, गवर्नमेंट मेजर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ओबीसी। संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत 15 क्लॉज नंबर 4 के अंतर्गत सरकार को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार है। अनुच्छेद 16(4) में सरकार को उन पिछड़े वर्गों के लिए सेवाओं और पदों में आरक्षण की व्यवस्था का अधिकार दिया गया है जिन्हें उसकी राय में सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। संविधान के अनुच्छेद 340 में व्यवस्था है कि राष्ट्रीय सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े वर्गों की परिस्थितियों और काम के मामले में उनकी कठिनाइयों का पता लगाने के लिए आयोग नियुक्त कर सकते हैं। इस आयोग से ये कठिनाइयां दूर करने के बारे में केंद्र या अन्य सरकारों से उपाय करने को कहा जा सकता है। दूसरे, पिछड़े वर्ग आयोग का गठन 1 जनवरी 1979 को स्वर्गीय श्री बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया था, जिसने 31 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट दे दी थी। 7 अगस्त को सरकार ने सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में 27% आरक्षण की मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने के अपने फैसले की घोषणा की। भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के कार्यकाल ज्ञापन, जिसमें भारत सरकार की असैनिक नौकरियों और पदों में सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी, 25 सितंबर 1991 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए संशोधन किया गया था और इसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए। भारत सरकार की सेवाओं और सिविल पदों में रिक्त स्थानों पर में से सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित 27% स्थानों पर नियुक्ति के लिए इन वर्गों के अपेक्षाकृत गरीब वर्गों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। भारत सरकार के सिविल पदों और नौकरी में खाली पड़े स्थानों में 10% आर्थिक दृष्टि से पिछड़े अन्य वर्गों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे जिन्हें पहले किसी आरक्षण योजना में शामिल नहीं किया गया। नए कार्यालय ज्ञापन में यह संकेत भी दिया गया कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अपेक्षाकृत गरीब वर्गों और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का, जिन्हें वर्तमान आरक्षण योजनाओं में शामिल नहीं किया गया, पता लगाने के लिए आर्थिक आधार अलग से निर्धारित किया जाएगा। भारत सरकार की ओर से 13 अगस्त 1990 और 25 सितंबर 1991 को जारी कार्यालय ज्ञापनों को विभिन्न रीट याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई। इन ज्ञापनों में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े ऐसे अन्य वर्गों के लिए सिविल नौकरियों और पदों पर नियुक्ति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जो किसी वर्तमान आरक्षण योजना के तहत नहीं आते थे। उच्चतम न्यायालय ने भी 13 अगस्त 1990 के कार्यालय ज्ञापन को सही ठहराया, जिसमें सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी, परंतु सामाजिक दृष्टि से संपन्न व्यक्तियों या वर्गों को इनमें शामिल नहीं किया गया। उच्चतम न्यायालय ने इन्हें क्रीमी लेयर यानी संपन्न वर्ग की संज्ञा दी। उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार को और राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे अन्य पिछड़े वर्गों में से क्रीमी लेयर को हटाने का आधार निर्धारित करें। न्यायालय ने भारत सरकार तथा हर राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को निर्देश दिया कि वे अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किए जाने वाले लोगों की शिकायतों और अनुरोध को प्राप्त करने, उनकी जांच करने और उन पर सिफारिशें देने के लिए एक स्थायी समिति का गठन करेंगे। सरकार ने 8 सितंबर 1993 से सिविल पदों और भारत सरकार की सेवाओं में प्रत्यक्ष भर्ती में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण लागू कर दिया, किंतु इन वर्गों के संपन्न लोगों यानी क्रीमी लेयर को आरक्षण से वंचित रखा गया। पिछड़े वर्गों की सूची में से क्रीमी लेयर को निकाले जाने का नियम निम्नलिखित लोगों के पुत्र, पुत्रों या पुत्रियों पर लागू होगा। पहला, भारत के राष्ट्रीय, उपराष्ट्रीय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कोई भी अभिभावक प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी। दूसरा, दोनों अभिभावक द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी हों। अभिभावकों में से कोई एक या दोनों सेना में कर्नल या उससे ऊपर के पद पर अथवा नौसेना या वायुसेना या अर्धसैनिक बलों में उनके समकक्ष पद पर हों। तीसरा, जिन परिवारों के स्वामित्व में राज्य भूमि सीमा कानून के अंतर्गत सिंचित भूमि को अधिकतम सीमा के 85% से ज़्यादा सिंचित भूमि हो, जिन व्यक्तियों की सकल वार्षिक आय 1,00,000 रुपये या उससे ज़्यादा हो, या लगातार 3 वर्षों तक जिनके पास संपत्ति कर कानून में निर्धारित छूट की सीमा से ज़्यादा की संपत्ति रही हो, वेतन या कृषि भूमि से होने वाली आय इसमें नहीं जोड़ी जाएगी। उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रमुख विशेषताएं निम्न थी। पहला, आरक्षण के लाभ कर्मियों की पहचान के लिए जाति का आधार स्वीकार कर लिया गया। दूसरा, आरक्षण की उच्चतम सीमा 50% तक निर्धारित कर दी गई। तीसरा, आरक्षण में से क्रीमी वाली सतह, क्रीमी लेयर निकाले जाने की सिफारिश की गई। चौथा, कुछ तकनीकी संस्थानों के लिए आरक्षण उचित नहीं माना गया। पाँचवा, केंद्रीय सरकार को सामाजिक आर्थिक आधार पर विशेष रूप से पिछड़े वर्ग में भी उन्नतिशील लोगों को बाहर करना होगा। छठा, प्रोन्नति या प्रमोशन में कोई आरक्षण नहीं हो सकता। सातवां, कम व अधिक भर्ती की जांच करने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा स्थायी आयोग का गठन करना चाहिए, जो पिछड़े वर्ग में सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन पत्रों की जांच भी करेगा। ऐसी आशा की जाती थी कि उच्चतम न्यायालय मंडल आयोग की रिपोर्ट पर कुछ रोक लगाएगा, किंतु वास्तव में न्यायालय के निर्णय ने पहले से ही जटिल समस्या को और भी अव्यवस्थित व जटिल बना दिया है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों की सूची की समीक्षा के लिए केंद्र में एक स्थायी संस्था गठित करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को लागू किया गया है। आयोग की सिफारिशें आमतौर पर सरकार को माननी होंगी। इसी सिलसिले में 14 अगस्त 1993 को सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति RN प्रसाद की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। फरवरी 1994 में पहली बार नियुक्तियां करके सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था शुरू की गई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आर्थिक और वित्तीय आधार पर सक्षम परियोजनाएं शुरू करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय साधन जुटाने और उनकी प्रौद्योगिकी तथा उत्तम संबंधी कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम गठित किया है। 1991 से 1993 में निगम की शेयर पूंजी के लिए 25 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। 1994-95 36 करोड़ रुपये और जारी किए गए। अब हम चर्चा करेंगे बहुचर्चित मंडल आयोग की सिफारिशें। मंडल आयोग ने सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में 27% आरक्षण का सुझाव दिया। आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार पिछड़े वर्गों की जनसंख्या 52% है, अतः शैक्षिक सुविधाओं में 52% आरक्षण का सुझाव दिया गया था, लेकिन संविधान की धारा 15(4) और 16(4) के अनुसार 50% स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। पहले से 22.5% स्थान अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित होने से अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 27% ही किया जा सकता है। आयोग की अन्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं। पहला, पदोन्नति के लिए भी 27% का सिद्धांत लागू किया जाए। दूसरा, यदि आरक्षित कोटा भरा नहीं जाता है तो 3 वर्ष की अवधि के लिए से बढ़ा दिया जाए, उसके बाद ही हिस्से हटाया जाए। तीसरा, पिछड़े वर्गों को भी आयु में छूट अनुसूचित जाति जनजाति के समान दी जाए। चौथा, आरक्षण का सिद्धांत केंद्रीय और राज्य सरकारों से सहायता प्राप्त करने वाले निजी प्रतिष्ठानों, विश्वविद्यालयों, बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में लागू किया जाए। पांचवा, इन सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार आवश्यक कानूनी प्रावधान करे। छठा, अनुसूचित जाति जनजाति के समान ही पिछड़े वर्गों की सूची तैयार की जानी चाहिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने 7 अगस्त 1990 को पिछड़ा वर्ग को केंद्र सरकार के नौकरियों में 27% आरक्षण की घोषणा की। इसके फलस्वरूप पूरे देश में विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में छात्रों ने हड़ताल कर दी। छात्र आंदोलन बहुत तेज हो गए। कई छात्रों ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने के विरोध में आत्मदाह किया। छात्र असंतोष गंभीर हो गए। अत्यधिक विरोध होने पर 1 अक्टूबर 1990 को मंडल आयोग की सिफारिशों पर न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी कर दिया। वीपी सिंह व चंद्रशेखर की सरकारों के पश्चात जब 1991 में नरसिंह राव की कांग्रेस सरकार केंद्र में आई तब इसने 25 सितंबर 1991 को एक अधिसूचना जारी की कि केंद्र सरकार की नागरिक सेवाओं सिविलियन जॉब्स के लिए प्रस्तावित 27% आरक्षण में से जो कि शैक्षिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित थे इन्हीं वर्गों में से गरीब वर्ग की को वरीयता दी जाएगी। इस प्रकार 10% उनके लिए अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था हो गई जो कि ऐसे आरक्षण के घेरे में नहीं आते थे। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के प्रकरण उच्चतम न्यायालय में भी ले जाए गए जिसने 15 नवंबर 1992 के अपने निर्णय में नौकरियों में आरक्षण की नीति का समर्थन किया और 27% आरक्षण के सरकारी निर्णय को यथावत रखा लेकिन नरसिंह राव सरकार के 10% अतिरिक्त आरक्षण के निर्णय को रद्द कर दिया। अब हम बात करेंगे मंडल आयोग की रिपोर्ट के पक्ष में तर्क आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ मंडल कमीशन रिपोर्ट। पहला, इनसे समाज के उस वर्ग में के संतोष के लिए संविधान द्वारा दिए गए आदेशों की पूर्ति होती है जो समय से असंतुष्ट थे। दूसरा, यह हमारा सामाजिक व नैतिक दायित्व है कि हम यह सुनिश्चित करें कि समाज में दलित व पीड़ित वर्ग के लोग धनी व समृद्ध लोगों के बराबर हों, उन्हें विश्वास की आवश्यकता है। तीसरा, आरक्षण केवल सरकारी सेवाओं के लिए होगा और इन सेवाओं में देश की कुल जनसंख्या का केवल 1% ही है। उस 1% के लिए भी पिछड़े वर्गों के लिए 27% का अतिरिक्त आरक्षण दे दिया गया है, इसलिए आरक्षण का लोगों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। चौथा, आरक्षण के लिए सिफारिशें जाति के आधार पर नहीं हैं। उदाहरणार्थ बिहार में राजपूत इस सूची में सम्मिलित नहीं किए गए हैं लेकिन गुजरात के राजपूत सम्मिलित हैं। बिहार के पटेल हैं जबकि गुजरात के पटेल सम्मिलित नहीं हैं। इस प्रकार प्रत्येक राज्य में परिस्थितियों के आधार पर सूची बनी है। पांचवा, पिछड़ी जातियों की राष्ट्रीय जनसंख्या अनुसूचित जातियां सम्मिलित जो कि 62% हैं उनका वर्ग क्लास 1 सरकारी सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र सेवाओं में केवल 4% ही प्रतिनिधित्व है। यह कमजोर वर्गों के साथ सरासर अन्याय है जिसका निराकरण अत्यंत आवश्यक है। छठा, आरक्षण विरोधियों द्वारा एक और तर्क योग्यता के प्रश्न पर आधारित है। अब हम बात करेंगे मंडल आयोग की रिपोर्ट के विरुद्ध तर्क आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द मंडल रिपोर्ट। मंडल आयोग की रिपोर्ट पर विविध पक्षों द्वारा कटु आलोचनाएं प्रस्तुत की गई हैं। 5 प्रमुख तर्क निम्न के विरुद्ध थे। मंडल आयोग की रिपोर्ट के विरुद्ध दिए गए कुछ और तर्क निम्नलिखित हैं। पहला, इसके क्रियान्वयन में अति शीघ्रता की गई। लोगों को तैयार किया जाना चाहिए था क्योंकि कुछ वर्गों को उपेक्षा की भावना का अनुभव करने की संभावना तो थी ही, यहाँ तक कि पार्टी के भीतर भी रिपोर्ट पर चर्चा नहीं की गई थी। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने अन्य संगठकों को भी जनता दल द्वारा अंधकार में रखा गया था। इस प्रकार रिपोर्ट का क्रियान्वयन बिना आम सहमति के किया गया था। दूसरा, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण कोटा निर्धारित मात्रा रखते समय आर्थिक स्थिति की सीमा निश्चित नहीं की गई थी। एक निश्चित आय से ऊपर एक परिवार को आरक्षण का अधिकार नहीं माना जाना चाहिए था। तीसरा, पिछड़े वर्गों को सुविधा छूट के नाम पर प्रशासनिक कुशलता खतरे में पड़ गई। संविधान की भी मान्यता यही है कि आरक्षण जारी रहना चाहिए किंतु प्रशासनिक क्षमता को गिराकर नहीं। चौथा, आरक्षण केवल एक पीढ़ी के लिए मान्य होना चाहिए था। अतः इस अध्याय का समापन होता है। धन्यवाद। लेकिन जाते जाते इसके इस अध्याय से रिलेटेड कुछ संदर्भ ग्रंथों को मैं पढ़ना चाहूँगा, रेफरेंस बुक्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। वर्ण एंड जाति, रिटन बाय आंद्रा बेटिले, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन। सेकंड, द अनटचेबल्स, अमृत बुक कंपनी, न्यू दिल्ली 1948 एंड इट इज़ रिटन बाय भीमराव अम्बेडकर। थर्ड, बुक्स आल्सो रिटन बाय भीमराव अम्बेडकर, हु वेयर द शूद्रास, पब्लिश्ड बाय ठक्कर एंड कंपनी, बॉम्बे 1946। द नेक्स्ट बुक दैट इज नंबर 4, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, जनवरी 1969। इट वॉज रिटन बाय बी आर चौहान। देन कमिश्नर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एनुअल रिपोर्ट्स 1961-85, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस, न्यू दिल्ली। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन अनटचेबिलिटी, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड कंसर्न डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस। Then caste and class in India, written by G.S. Ghurye. Then caste, class and occupation, written by G.S. Ghurye, 9th chapter on scheduled castes. Then development of weaker sections, written by G.B. Kabra, published by Inter India Publications. द नेक्स्ट कास्ट एंड फिलॉसफी इन प्री बुद्धिस्ट इंडिया रिटन बाई बी आर कांबले द नेक्स्ट ट्राइबल सिचुएशन इन इंडिया रिटन बाई के सुरेश सिंह एंड देन रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया रिटन बाई डी एन मजूमदार उसके बाद सामाजिक समस्याएं राम आहूजा उसके बाद सोशल मूवमेंट इन इंडिया एम एस ए राव देन समकालीन भारत की सामाजिक समस्याएं सुरेश चंद्र राजौरा के द्वारा लिखित है। धन्यवाद।